زندگی ائمه علیهم السلام رو که 250 سال طول کشیده زندگی یک انسان به حساب بیارید. یک انسان 250 ساله از هم جدا نیستن، کلهم نور واحد.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المردومين. بہت شکریہ ناظرین ایک بار پھر ہمیں جوائن کرنے کا. ہم آپ کے سامنے ایک عظیم اور نایاب کتاب کے حوالے سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور یہ سلسلہ دروس معروف اور مشہور کتاب 250 سالہ انسان جو رہبر معظم آیت اللہ عظم سید علی خامنائی کی معرکۃ الاعلیٰ اور بہترین کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، اس کے حوالے سے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں. ہم اس کتاب کے حوالے سے جو مختلف اہم مطالب اور مختلف جوانب ہیں اس کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کریں گے، اور اس کتاب کے اندر موجود ان عظیم اور ان گہرے نکات کو کہ جو رہبر معظم نے فرمائے ہیں اس کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے. امید ہے کہ پچھلے سلسلوں کی طرح یہ سلسلہ دروس بھی آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کرتے رہیے گا. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے بہترین مطالب اور مفید آرائز جو ہیں وہ پیش کی جا سکے. کتاب 250 سالہ انسان کے جو پہلا جو سبق ہے وہ ہے اس کا مقدمہ، کہ جس میں رہبر معظم آیت اللہ عظم سید علی خامنائی نے اس کتاب کی مجموعی مرکزی خیال کو جو ہے وہ بیان کیا ہے، اور آئمہ کی زندگی کی اجتماعی جدوجہد کا ایک اجمالی خاکہ ہمارے سامنے جو ہے وہ پیش کیا ہے. اور اس پر بھی گفتگو ہوئی ہے کہ اس کتاب کا نام 250 سالہ انسان اور اس کتاب کے مرکزی خیال کو 250 سالہ انسان کا نام کیوں دیا گیا ہے. معمولاً کتابوں کے مقدمے جو ہوتے ہیں وہ کتابوں کے عمومی مطالب ہوتے ہیں، اس سے زیادہ اہم نہیں ہوتے، لیکن اس کتاب کا مقدمہ جو ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے اس کتاب کے اندر، کہ جس میں ہم اس کتاب کے جو مرکزی خیال ہیں اور اس کتاب پہ جو ایک لمیٹیشنز ہیں اور جو باؤنڈریز ہیں اور جو اس کتاب کی ایک اجمالی خاکہ ہے اس سے ہم جو ہے وہ آشنا ہوں گے. اگر اس کتاب کے مقدمے کو ہم صحیح طرح سمجھ لیں اور اس مقدمے کے اندر جو مطالب بیان کیے گئے ہیں اس کی گہرائی تک صحیح طرح ہم پہنچ جائیں تو ہم اس کتاب کے آگے کے جو مطالب ہیں اس سے لطف اندوز ہوں گے اور ان خیالات تک اور ان مطالب تک پہنچ سکیں گے جس کی طرف رہبر معظم اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن اگر اس کتاب کے مقدمے کے حوالے سے ہم تھوڑی دیر تک تا کریں اور اس حوالے سے کوئی زیادہ جو ہے وہ تحقیق اور تجزیہ نہ کرے تو شاید آگے کے مطالب ہمارے لیے اتنے زیادہ مفہوم اور اتنے زیادہ جو ہے وہ وضاحت کے ساتھ ہمارے لیے روشن نہیں ہو سکیں گے. سب سے پہلا جو مطلب اور جو نقطہ اس اہم ترین مقدمے میں اس کتاب کا بیان ہوا ہے وہ یہ کہ آئمہ علیہ السلام کی جو زندگی ہے اس کے جو غریبانہ پہلو ہیں، اس کے جو غربت کے پہلو ہیں، آئمہ علیہ السلام کی زندگی کے جو مصائب ہیں، مشکلات ہیں اور جو غربت ہیں، ایک تو وہ ان کی زندگی سے متعلق ہیں کہ جس سے ہم کم و بیش آشنا ہیں اور بچپن سے لے کے اب تک ہم اپنی زندگی میں سنتے رہتے ہیں ہر امام کی مشکلات، مصائب اور جو اذیتیں اسے سہنی پڑی. یہ ایک غربت کا پہلو آئمہ کی زندگی کا جو رہبر معظم بیان کر فرما رہے ہیں، لیکن رہبر معظم فرما رہے ہیں یہ جو غربت کا پہلو تھا یہ آئمہ کی زندگی تک تھا، ہر امام اور معصوم کی زندگی تک تھا، لیکن ایک ایسا غربت کا پہلو ہے کہ جو آئمہ کی زندگی میں ان کی زندگی کے بعد بھی جاری ہے، اور صرف یہ نہیں کہ ان کے دشمنوں تک ہی محدود ہے بلکہ ان کے چاہنے والوں میں بھی وہ غربت کا پہلو جو ہے وہ آئمہ کی نسبت جو ہے وہ موجود ہے. اور وہ کیا پہلو ہے کہ وہ آئمہ کے جو بنیادی ترین ہدف ہیں اور ان کی زندگی کا جو محاصل ہے اس سے غفلت ہے، اور وہ بنیادی ترین پہلو کیا ہے، وہ آئمہ کی زندگی کا جو 250 سالہ زندگی ہے آئمہ کی اور آئمہ کی جو مجموعی حیات طیبہ ہے 14 معصومین علیہ السلام کی، وہ اس کا جو ہے وہ ایک اہم ترین پہلو کیا ہے، وہ ان کی اجتماعی جدوجہد ہے اور وہ ان کی 250 سالہ جدوجہد اہم ترین غربت ہے کہ جو ابھی بھی آئمہ علیہ السلام کی نسبت جو ہے وہ جاری ہے، اور مسلمان مومنین اور بالخصوص ان کے چاہنے والے شیعہ بھی جو ہے وہ اس سے غافل ہیں. और ये वो पहलू है कि जो बरतरफ होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि जिंदगी के जो मुश्किलात होती हैं और जो बातें होती हैं वो तो गुजर गई, और वो आयम वाले सलाम जो है वो उसका अजर जो है खुदा उनके मुताल ने उनको दिया, और उनके मकामात इतने बरतर हैं कि ये मुश्किलात और मसाइब उनके मकामात और उनके नूर के सामने और उनके नूरानी हैसियत के सामने कुछ हैसियत के हामिल नहीं है। लेकिन उनकी जिंदगी के बुनियादी मकसद से गफलत, उनकी जिंदगी के हदफ से जो है वो उनको नजरअंदाज करना, वो एक अहम तरीन गुर्बत है, वो एक अहम तरीन मसाइब है आइमा के, जो इस दौर में भी जो है वो हमारे सामने मौजूद है। और ये मसाइब जो है वो उनके दुश्मनों की तरफ से नहीं है बल्कि अफसोस के साथ उनके चाहने वालों की तरफ से। आगे बढ़ते हुए इसमें जो नुक्ता फरमाया जा रहा है कि आइमा की जो सीरत और जिंदगी है उसका अगर हम मुतालिया करें तो वो दो तरह से जो है वो मुतालिया जो है वो हम कर सकते हैं। एक तो ये कि जो हमारे यहाँ बतौर मामूल वो ये है कि हम आइमा की जिंदगी के जो वाकयात हैं और उनके जो हादसात हैं और वाकयात हैं उनको हम दास्तान की निगाह से देखते हैं। एक हमारे लिए एक जिस तरह और दास्तान है उस तरह एक और दास्तान हो जाती है, और थोड़ी सी अहमियत के साथ, क्योंकि वो आइमा एक अजीम मर्तबत हस्तियाँ हैं और हम उस पे उनके वाकयात पे और उनकी जिंदगी के जो पेश आने वाले जो है वो हादसात हैं उन पर गिरिया करते हैं या खुश होते हैं, और उसके बाद हमारी जो है वो उन वाकयात से जो हमारा ताल्लुक है वो खत्म हो जाता है। ये एक तरीका है, यानी दूसरा ये कि हम आइमा की जिंदगी को सिर्फ दास्तान के उनवान से ना देखें, वाकयात के उनवान, तारीखी वाकयों के उनवान से ना देखें, बल्कि उनकी जिंदगी को एक दर्स के उनवान से देखें, सरलोए कलाम के उनवान से देखें, अपनी जिंदगी का सरनामे कलाम बनाने की कोशिश करें, उनकी जिंदगी से मार्फत हासिल करें, उनकी जिंदगी से दर्स हासिल करें। ये एक जो है वो गफलत ज्यादा पहलू है हमारे माशरे में आइमा की जिंदगी के हवाले से, कि जिस तरह उनकी जिंदगी, क्योंकि जिस अगर हम आइमा की जिंदगी को सिर्फ एक तारीखी वाकयात के मजमुए के तौर से देखेंगे तो फिर आइमा की जिंदगी के जो अहम तरीन और बुनियादी तरीन जो पहलू हैं और जो उनके अहदाफ हैं वो हम उनसे गाफिल हो जाएंगे। हम उनकी जिंदगी को भी एक तारीखी वाकयात का तारीखी किताब के उनवान से देखेंगे और जो है वो गुजर जाएंगे। इसी तरह अगर हम दूसरे तौर से देखेंगे दर्स के उनवान से उनकी जिंदगी को, उनकी जिंदगी को मार्फत के एक अबवाब के, मार्फत के दरवाजे के उनवान से देखेंगे तो हमारी निगाह जो है उनकी जिंदगियों के हवाले से जो है वो बदल जाएगी और हम दूसरी निगाह से जो है वो तहलील करना शुरू करेंगे। इसी तरह जो अहम तरीन नुकता आप इसके बाद हजूर है मुकदमे में वो यही है कि आयमा की जिंदगी को हम एक शॉर्ट टर्म से जो है वो स्टडी कर सकते हैं, मुताला कर सकते हैं, एक बुलंद मुद्दत, एक तुलानी मुद्दत की हैसियत से, एक लॉन्ग टर्म बेसिस पर जो है वो स्टडी कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म बेसिस पे क्या, वो ये कि हम जो है हर इमाम को, जैसा कि अमूमी तौर से किया जाता है, हर इमाम को अलग अलग उसकी जिंदगी को स्टडी करें, उसके तारीखी वाकयात, उसके जो जिंदगी में पेश आने वाले मसाइब और मुश्किल और जो अजियतें उसे दी गई और जो उन्होंने इकदाम अंजाम दिए उनको पढ़ लें और हर इमाम को अलग अलग से देखें। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये क्या है कि नहीं, हम आइमा की जिंदगी को अव्वल तो आखिर, यानी पैगंबर ग्रामी की विलादत से लेकर और जो है इमाम जमाना अलैहि सलाम की जो है वो गैबत कुबरा तक जो है वो बकायदा एक जो है एक शख्स की हैसियत से, इसे एक मासूम की हैसियत से, इसे एक हस्ती की हैसियत से, एक हकीकत की हैसियत से जो है वो इसे देखा जाए। अगर हम इस हकीकत से देखेंगे, इस एक हकीकत को जो है, इस हकीकत को एक नूर के तवस्सुल से देखेंगे, जैसे रिवायात में अर्ज हुआ कि कुल्लुहुम नूरुन वाहिद के आइमा अलैहिस्सलाम सारे के सारे एक नूर है, इसी तरह मौलाना मोहम्मद व आखरुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, तो अगर हम इस उनवान से आइमा की जिंदगी को देखेंगे तो हमारा जो आइमा की जिंदगी को पढ़ने का जो जहत है और उनकी जिंदगियों को देखने का जो अंदाज है वो यकसर जो है वो तब्दील हो जाएगा। और रहबर मौजम इसी हवाले से इस किताब में जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं, मामूलन जो हमारे तारीख में उलमा ने किताबें लिखी आइमा की सीरत पर और आइमा की सीरत को बयान किया या तर्जो तहरीर की, तो इस निगाह से की हर इमाम को अलग अलग तौर से जो है वो देखा गया और हर मासूम की जिंदगी को अलग तौर से पेश किया गया और तजियो तहलील की गई हर वाकये के लिहाज से और हर तारीख के जमान और मकान के लिहाज से। लेकिन इस पहलू से गफलत बरती गई कि खुद ये आइमा की जिंदगी जो है ये एक मासूम की हैसियत से देखी जाए, एक जो है वो तहरीक, एक मुश्तरका तहरीक, एक मुसलसल तहरीक के उनवान से देखी जाए, क्योंकि रिवायात के नजर से ये मासूम जो है ये ज़ाहिरी तौर से मुख्तलिफ शख्सियतें हैं लेकिन हकीकी तौर से एक नूर है, बातिनी तौर से एक जो है वो एक हकीकत का नाम है 14 मासूमीन। और इस पहलू को अगर हम मद्देनजर रखेंगे तो हम आइमा की जिंदगी को बेहतरीन अंदाज में और बहुत ही गहरे अंदाज में जो है वो स्टडी कर सकेंगे। क्योंकि अगर हम अलग अलग तौर से आइमा की जिंदगी को जोड़ा जोड़ा देखेंगे तो जाहिरी तौर से हमें उनकी जिंदगी में इख्तिलाफ नजर आए, इख्तिलाफ से मुराद यानी मुख्तलिफ जो है पहलू नजर आएंगे जो एक दूसरे से टकरा रहे हैं, और इस वजह से हो सकता है कि हम जो है वो जाहिरी तौर से जो है वो शशोपंच का शिकार हो जाए या हम उन मतालिब को जो है नजरअंदाज कर देंगे जो आइमा की एक मुर्तबित तहरीक के अंदर और एक मुसलसल तहरीक के अंदर मौजूद है। बतौर मिसाल अगर हम एक इंसान तसव्वुर करें कि जो एक लंबी उम्र जिंदगी करता है और एक फाल जिंदगी गुजारता है तो उसकी जिंदगी के अंदर जो है मुख्तलिफ तदाबीर और मुख्तलिफ हिकमत अमलियां जो है वो शामिल होंगी। कभी उसकी रफ्तार जो है वो तेज हो जाएगी और कभी उसकी रफ्तार जो है वो कम हो जाएगी। बिल्कुल मिसाल उस ट्रेन की अगर हम लें, उस ट्रेन की अगर हम लें कि इस रेलगाड़ी की अगर हम लें कि जो जा रही है और जब वो एक स्मूथ एरिया में है और एक साफ जगह पे जो है वो रेलगाड़ी चल रही है तो वो उसकी रफ्तार जो है वो नॉर्मल होगी जैसे कि होनी चाहिए। लेकिन अगर वो किसी एक ऐसी जगह पहुंचती है कि जहां कोई टीला है या रास्ता जो है वो ऊपर की जानिब है तो फितरी तौर से जो ट्रेन है उसकी रफ्तार जो है वो सुस्त हो जाएगी, या इसी तरह ऐसी ढलान पे पहुंचती है कि जिसमें जो है वो ट्रेन आती है और उस ढलान में ट्रेन जाती है तो उस ढलान में जाते वक्त उस ट्रेन की जो रफ्तार है वो तबीयतन और जो है वो मसलन जाहिरी तौर से और वाज़े तौर से क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। लेकिन दर हकीकत ये अगर हम इस ट्रेन के सफर को अव्वल तक आखिर देखें तो ये एक जो है वो ट्रेन का सफर है कि जो कभी सुस्त रफ्तार हो जाता है, कभी तेज रफ्तार हो जाता है, कभी जो है उसकी रफ्तार मुनासिब हो जाती है। तो आइमा की जिंदगी को भी अगर हम अलग अलग तौर से देखेंगे तो हम ये हमें उनकी जिंदगी के अंदर जाहिरी तौर से मुख्तलिफ चीजें नजर आएंगी, मुख्तलिफ इकदाम नजर आएंगे और जमान और मकान की शराइत के मुताबिक मुख्तलिफ जो है मौकिफ हमें नजर आएंगे। लेकिन हम आइमा की जिंदगी को उस बुनियाद पर कि जिस तरह रिवायात के अंदर उनको एक हकीकत के तौर से बयान किया गया, एक नूर के उनवान से बयान किया गया, इनको एक मासूम तसव्वुर करेंगे जिसके 14 चेहरे हैं, उस लिहाज से अगर हम आइमा को तसव्वुर करेंगे तो हम ये देखेंगे कि एक 250 साल तहरीक है, एक मजमूई इज्तिमाई जिद्दोजहद है कि जो पैगम्बर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से शुरू होती है और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के जमाने तक जो है वो जारी रहती है। और इस मजमूई 250 साल जो जिद्दोजहद है इसका नाम जो है वो रहबर मौज़म ने इसको 250 साल इंसान का नाम दिया है, और इस 250 साल इंसान के जो मरकजी ख्याल है उसके ऊपर इस किताब का जो है वो नाम रखा गया है, जो दरहकीकत रहबर मौज़म की तकारीर का मजमुआ है कि जो अहम तकारीर जो रहबर मौज़म ने आइमा की सीरत पर जो है वो बयान की है उसको यहाँ पर जो है वो उसका जो है वो जमा किया गया है और एक किताब के मौनमान से बेहतरीन मजमुआ जो है वो तैयार किया गया है कि जिसके अंदर एक नया मरकजी ख्याल दिया गया, एक नई जहत दी गई है आइमा की जिंदगी के हवाले से जो तारीख इस्लाम में अब तक जो है वो मगफूल करार पाई थी, यानी उस पर उस निगाह से आइमा की जिंदगी को मुतालिया नहीं किया गया था। खुद एक ये जो है जो ये जहत है आइमा की जिंदगी को देखने की कि एक नया इश्तेहाद है रहबर मौज़म का, एक नई फिक्र आइमा की जिंदगियों को मुतालिया करने के हवाले से, और ये खुद ये जो नजरिया है ये नजरिया जो रहबर मौज़म ने दिया है ये बात साबित करने के लिए काफी है कि रहबर मौज़म किसने जो है इंसान इस्लाम आलम इस्लाम के अजीम मुफक्किर हैं। और अगर तारीख इस्लाम में देखा जाए तो रहबर मौज़म का नाम उन चीदा मुफक्किरीन में से आता है कि जिन्होंने नए नजरिए आलम इस्लाम को दिए और आलम इस्लाम की नजरियाती और फिक्री तरक्की के अंदर और उसकी इर्तिका के अंदर जो है अपना वाज़े और बुनियादी किरदार जो है वो अदा। इसी तरह जब हम आइमा की जिंदगी को मजमूई तौर से और 250 साल इज्तिमाई जद्दोजहद के उनवान से देखेंगे और उसको एक शख्सियत की जो है तहरीक के उनवान से देखेंगे तो हम यही देखेंगे कि आइमा की जिंदगी में कभी हम ये देखते हैं कि आगे बढ़कर इकदाम किए गए हैं, जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जिंदगी में जो है वो क़याम किया गया, और कभी हम देखते हैं कि नई स्ट्रेटेजिक हिकमत अमली के तौर से स्ट्रेटेजिक जो है वो अकम नशीनी की गई, यानी एक कदम दो कदम जो है वो पीछे रखा गया। जाहिरी तौर से अगर हम आइमा को देखेंगे तो आइमा की जिंदगी को अलग अलग तौर से देखेंगे तो हम शायद समझ ना पाए कि किस तरह एक इमाम जो है वो इतना जो है वो आगे बढ़कर कायम कर रहे हैं और दूसरा इमाम जो है वो अपने शराइत ज़मान और मकान के मुताबिक जो है वो एक दूसरी जो है वो हिकमत अमली अपना रहा है। तो दर हकीकत अगर हम इसको एक मजमूई जद्दोजहद से देखेंगे तो हमें ये बात समझ आएगी कि जब भी एक शख्सियत एक लंबे तौर से बुलंद मुद्दत जिद्दोजहद करती है तो हर जमाने और मकान की शराइत के मुताबिक उससे अपनी हिकमत अमलिया तब्दील करनी पड़ती है। जैसे एक मुल्क की फौज होती है, अगर वो कभी जंग कर रही होती है तो वो स्ट्रेटेजी के तौर से कभी हमला करती है और कभी मुहाज को क्या करती है, दुश्मन के लिए खाली करती है। उस मुहाज को दुश्मन के लिए खाली करने का मतलब ये नहीं होता कि उसने अपने मौकफ से जो है वो दस्तबरदार हो गए, बल्कि वो महाज को इसलिए खाली किया जाता है कि ताकि दुश्मन आगे आए, जब आगे आएगा तो उसको मौका मिलेगा कि वो जो है दुश्मन को गिरफ्तार कर सके या दुश्मन को अपने जाल के अंदर जो है वो फंसा सके। तो ये स्ट्रेटेजिक जो फॉल आउट होता है या स्ट्रेटेजिक तौर से जगह को महाज को खाली किया जाता है, इसको अगर हम एक बड़ी स्ट्रेटेजी के अंदर देखेंगे तो ये खुद ये जो इकदाम होता है ये एक जारहाना इकदाम होता है, ये खुद इकदाम जो होता है एक इर्तिकाई इकदाम होता है, ये खुद इकदाम जो होता है उस बड़ी स्ट्रेटेजी के अंदर एक ऐसा इकदाम होता है कि जो दस्तबरदारी शुमार नहीं होता बल्कि इसको स्ट्रेटेजिक तौर से एक हमला जो है वो समझा जाता है। क्यों? क्योंकि मजमूई जिद्दोजहद में इस इकदाम का जो नतीजा होता है वो जंग करने वाले के मफाद में होता है। तो बहरहाल इसी तरह रहबर मौज़ा फरमाना चाह रहे हैं कि आइमा की जिंदगी में जो हम जाहिरी तौर से जो है मुख्तलिफ चीजें देखते हैं, मुख्तलिफ मौकफ और इकदाम देखते हैं, अगर हम इसको 250 साल तौर से देखेंगे तो हमें ये चीजें समझ आएंगी और हमें समझ आए किस तरह आइमा ने अपनी 250 साल जिंदगी में पूरे 250 साल के अंदर अपनी इज्तिमाई सियासी और फिक्री जिद्दोजहद को जो है वो आगे बढ़ाया है और लम्हा व लम्हा उन्होंने इस जिद्दोजहद को जो है वो इर्तिका दिया है और तरक्की दी है। ऐसा नहीं है कि वो कभी आगे आए हैं तो कभी उन्होंने अपना जो इर्तिका रोक दिया और अगप नशीनी और पसरफ्त जो है वो इख्तियार कर लिए, नहीं, बल्कि अगर हम इसको मजमूई तौर से देखेंगे तो हमें समझ आएगा कि ये जो आइमा ने जो है मुख्तलिफ तदाबीर और हिकमत अमलियां अपनाई हैं ये भी जो है बुलंद मुद्दत के अंदर, तुलानी मुद्दत के अंदर ये सब एक बड़ी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि जो एक 250 साल इज्तिमाई जिद्दोजहद है। अगर इस मरकजी ख्याल को हम ना अपनाएं आइमा की जिंदगी में तो बहुत सारी मुश्किल जगह पर हम मुश्किल का शिकार हो जाएंगे और हम आइमा की जिंदगी को आपस में रब देने में जो है वो कासिर होंगे। क्यों? क्योंकि हर जमाने और मकान की शराइत जो है वो मुख्तलिफ है और आइमा ने इस हवाले से मुख्तलिफ तदाबीर और हिकमत अमलियां और मौके अपनाई है। तो लिहाजा जरूरी है कि हम आइमा की जिंदगी को एक 250 साल जिंदगी के तौर से देखें और उनकी जिंदगी को 250 साल इज्तिमाई और मजमूई सियासी जिद्दोजहद के उन्वान से देखें ताकि हम आइमा की जिंदगी के अंदर मौजूद मुख्तलिफ हिकमत अमलियों के और मौकिफ को सही तौर से और उनकी सही जायगा को और उनके सही मरतबे को जो है हम समझ सके। इससे आगे जो अहम नुकता रहबर मौज़ा फरमा रहे हैं कि आइमा की जो 250 साल जिद्दोजहद है ये कैसी जिद्दोजहद है, इसके खद्दोखाल क्या है, इसकी बुनियादें क्या है, इसके जो है वो बाउंड्रीज क्या है, उसकी जो है वो फोर कॉर्नर्स क्या है हमारे लिए रोशन हो, उसकी माहियत हमारे लिए रोशन होनी चाहिए, उसकी खद्दोखाल उसकी तारीफ हमारे लिए रोशन होनी चाहिए। तो रहबर मौज़ा यहाँ फरमाते हैं कि आइमा की जो 250 साल जिद्दोजहद है वो सिर्फ इल्मी एतिकादी और फिक्री नहीं है। बतौर मिसाल बाज तारीख इस्लाम के अंदर जो जिद्दोजहद है वो सिर्फ कलामी है, बतौर मिसाल मकतब अशायरा या मकतब मुतजिला, ये सिर्फ कलामी मकातब है, इनके नजरियात और इनकी जो इल्मी तहरीकें सिर्फ बाज नजरियात तक महदूद हैं और इनको तहरीक क्यों क्या की, क्योंकि इनके बहुत सारे इज्तिमाई नतज भी सामने आए और इस आलम इस्लाम के अंदर इन मकातब के दरमियान कतलो कताल भी जो है वो पेश आया। लेकिन बहरहाल आइमा की जो जिद्दोजहद है वो इनसे मुख्तलिफ, आइमा की जो है सिर्फ कलामी नहीं, हालांकि मकतब इमामिया एक मकतब कलामी के उनवान से आइमा ने मुतारिफ कराया लेकिन सिर्फ कलामी जिद्दोजहद नहीं है, या इसी तरह जो है वो सिर्फ इल्मी जिद्दोजहद नहीं है जिसके अंदर इस्लाम के इल्मी मसाइल जो है वो रोशन किए गए और उसके अलावा कोई और इकदाम ना किया गया हो या सिर्फ और किसी और जब पहलू से इस्लाम के हवाले से खिदमत अंजाम ना दी गई हो। बतौर मिसाल इलमी की जो और फिकी मकातिब की जो हमारे सामने मिसालें मौजूद है, मतलब मकतब हनफी या इसी तरह मकतब हम्बली, मकतब शाफी या मकतब दूसरे मकातिब, इसके मुकाबले में मकतब जाफरी भी है और आइमा ने एक बाकायदा इलमी और फिकी मकतब भी हमारे सामने जो है वो पेश किया, लेकिन सिर्फ आइमा की जिंदगी इस तक महदूद नहीं थी कि सिर्फ एक फिकी मकतब हो और सिर्फ एक इलमी मकतब, बल्कि आइमा की जिंदगी की जो जिद्दोजहद थी वो इसके अलावा थी, ये भी थी और इसके अलावा भी थी, कलामी भी थी और उसके अलावा भी थी। इसी तरह आइमा की जो जिद्दोजहद है वो सिर्फ एतिकादी मसाइल तक महदूद नहीं थी कि सिर्फ मकतब अहले बैत के मारिफ और एतिकादात और इस्लाम हकीकी के एतिकादात को रोशन किया जाए और इसके अलावा उनकी कोई और जिम्मेदारी नहीं थी, नहीं, वो भी थी और वो भी एक अहम उसूल था आइमा की जिद्दोजहद का, लेकिन जो आइमा की जिद्दोजहद थी वो इसके अलावा थी। और इसी तरह सिर्फ आइमा की जिंदगी इसी तरह सिर्फ मुसल्लहाना भी नहीं थी, कि जैसे हम बाज जो है वो मकातिब में देखते हैं मकतब जैदिया में, या इसी तरह बाज दूसरे मकातिब में जो सिर्फ हमें मुसल्लहाना जिद्दोजहद नजर आती है, इसके अलावा दूसरे फिक्री एतिकादी और इल्मी पहलू हमें नजर नहीं आते कि बकायदा उनका मकतब इल्मी हो, मकतब फिक्री हो, या इसी तरह मकतब जो है वो एतिकादी हो, बल्कि उनके यहाँ हमें सिर्फ मुसल्लहाना जिद्दोजहद नजर आती है। इसी तरह आले हसनी सादात के अंदर हमें बाज जो है वो मुसल्लहाना जिद्दोजहद नजर आती है। तो आइमा की जिंदगी जो है वो इन जिद्दोजहद जो है इन सबसे मुख्तलिफ है, और सिर्फ इल्मी एतकादी और जो है वो कलामी भी नहीं है, और सिर्फ जो है वो मुसल्लहाना जिद्दोजहद भी नहीं है, बल्कि आइम्मा की जो जिद्दोजहद है 250 वाला जिद्दोजहद है वो इनसे मावरा है, वो इन ये भी है इनसे बढ़कर है। और वो क्या है, आइम्मा की जो 250 वाला जिद्दोजहद है वो एक मजमुई और कामिल और जो है हमजहद सियासी जिद्दोजहद है। आइम्मा की जो 250 वाला जिद्दोजहद है वो हमजहद सियासी जिद्दोजहद है, और इस हमजहद सियासी जिद्दोजहद से क्या मुराद है, इंशाल्लाह अगली किस्त में आपके सामने जो है वो हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत दीजिए, उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये आराइज आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। हमें दुआ में याद रखिएगा और अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
जिंदगी आइमा अलैहिमुस्सलाम रो 350 साल फूल कशीदे, जिंदगी एक इंसान पे हिसाब भी है।